आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रिया सिंह है। आज हम आपकी किताब सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 18, जिसका नाम है महाजनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य, इसको डिस्कस करेंगे। हमने इस चैप्टर का कुछ पोर्शन पहले डिस्कस किया हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस चैप्टर को रीड किया होगा। तो बच्चों, अभी तक हमने इसमें महाजनपदों का इतिहास जाना कि कैसे एंशियंट टाइम में हर चीज को सिस्टमैटिक किया जाता था और अपनी सोसाइटी में पीस एंड सिक्योरिटी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग किया गया, जिसके लिए बहुत सारे महाजनपदों का उद्भव हुआ। यानी कि जब छोटे छोटे कबीले एक साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े एरिया में बाउंड होने लगे, तो बच्चों वो महाजनपद का रूप लेने लगे। इसके बाद हमने लगभग 10 महाजनपदों को बहुत बारीकी से समझा। अभी तक हमने पेज नंबर 131 पर दिए गए 10 महाजनपद, जिनके नाम हैं कोसल, काशी, मत्स्य, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स और कुरु, इन सभी महाजनपदों को जाना कि ये कहाँ लोकेटेड हैं, कौन सी नदी पर लोकेटेड हैं और इनकी क्या खासियत है। जैसे बच्चों, हर एक शहर की अपनी अपनी खासियत होती है। जैसे कि दिल्ली को हम पॉलिटिकल कैपिटल कहते हैं, बॉम्बे को हम इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं, वैसे ही आप बताइए और सोचिए अपने आप में कि आपके शहर को किस नाम से बुलाते हैं और उस शहर की क्या खासियत है, वो कौन सी नदी पर लोकेटेड है, उसके आसपास में कौन से क्षेत्र हैं। एक बेसिक जानकारी के तौर पर बच्चों, आपको ये सब कुछ पता ज़रूर होना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपना 11th महाजनपद कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि पेज नंबर 131 पर हमें आगे क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के अपनी बुक्स को ओपन करिए, इसके पेज नंबर 131 पर जाइए और इसमें दिया गया 11th पॉइंट पांचाल, जिसका नाम है, इस पर ध्यान दीजिए। तो बच्चों, इसमें लिखा है, इस महाजनपद का विस्तार आधुनिक बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले रोहिलखंड और मध्य दोआब में था। यह दो भागों में विभक्त था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिक्षत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। यहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था कायम थी। बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको पांचाल महाजनपद की जानकारी दूं और जो रीड किया उसको समझाऊं, मैं दो बेसिक टर्म्स जो हमें बार बार इन महाजनपदों के डिस्कशन में रिपीट हो रहा है उसको समझाऊंगी। तो बच्चों, हमारा पहला वर्ड है गणतंत्रीय। इसका मतलब है कि वो सिस्टम जहां पर राजा का चुनाव गढ़ करते हैं। गढ़ का मतलब है लोग, लोगों का समूह, इसको हम गणतंत्रीय कहते हैं। और एक होता है बच्चों राजतंत्रीय, जहां पर राजा अपने फैमिली बेसिस पर, यानी कि उनके राज शासन पुश्तैनी होते हैं और उसी बेसिस पर वो खुद से राजगद्दी संभालते हैं या फिर उस क्षेत्र में शासन करते हैं। तो बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि गणतंत्रीय इंसान, यानी कि हम सभी आम जनता चुनते हैं, और राजतंत्रीय एक हेरिडिटरी सिस्टम है जिसको हम पुश्तैनी कहते हैं, जैसे कि हमारे इंग्लैंड में जो रानी एलिजाबेथ है, या फिर वहाँ पर और भी बहुत सारे क्वींस किंग्स हैं जिनका सिस्टम आज भी प्रेवलेंट है, वो एक मोनार्की होती है जिसे हम हिंदी में राजतंत्र कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी रीडिंग में गणतंत्रीय या राजतंत्रीय शब्द आएगा तो आपको कोई परेशानी या कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गढ़ मतलब लोग, और राज मतलब राजा, और गणतंत्रीय में राजा अपने अकॉर्डिंग काम करता था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के प्रतिनिधि यानी कि लोगों के द्वारा चुने गए ऐसे लोग भी होते हैं जो राजा को किए गए कामों पर कंट्रोल करते हैं। लेकिन राजतंत्रीय व्यवस्था में बच्चों राजा अपनी मनमानी कर सकता है। तो खैर, हमारा जो पांचाल महाजनपद हमने पढ़ा, जो कि 11th पॉइंट पर पेज नंबर 131 में दिया है, ये एक गणतंत्रीय व्यवस्था थी, यानी कि लोग यहाँ पर राजा का चुनाव करते थे। और आज हमारी कंट्री को भी यानी इंडिया को रिपब्लिक इंडिया कहते हैं। यहाँ पर हम लोग ही अपने शासक को या रूलर को, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनडायरेक्टली चुनते हैं। तो बच्चों, पांचाल में लिखा हुआ है कि ये आज का जो बदायूं क्षेत्र है और फर्रुखाबाद जिला है, जो कि आज हम वेस्ट यूपी में देख सकते हैं, यहाँ पर फैला हुआ था। और तो और ये रोहिलखंड जो है बच्चों, आज भी हम रोहिलखंड देखते हैं, जो बदायूं और फर्रुखाबाद वाला एरिया है वो, और मध्य दोआब, इस क्षेत्र को मिलाकर पांचाल महाजनपद बना हुआ था। और वैसे बच्चों, हम हमेशा से देखते आए हैं कि अगर किसी जगह पर या किसी राज्य में अच्छी व्यवस्था नहीं है, यानी कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन की फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, तो हम वहाँ पर पावर का डिवीजन देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें अपनी कंट्री में, तो बच्चों हर एक लेवल पर प्राइम मिनिस्टर से लेकर के आपके सरपंच तक डिवीजन है। वो डिवीजन इसलिए है ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे तरीके से हम लोग चला सके। और तो और हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी अलग होता है। इसका मतलब कि देश एक ही है, लेकिन उसको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। वैसे ही हमारे पांचाल महाजनपद को एंशियन टाइम में भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसको हम उत्तरी पांचाल यानी कि नॉर्दर्न पांचाल और दक्षिणी पांचाल यानी कि सदर्न पांचाल के नाम से जानते थे। और इसी हिसाब से बच्चों इनके कैपिटल्स भी दो हुआ करते थे, जैसे कि नदन पांचाल यानी कि उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, और सदर्न पांचाल यानी कि दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। तो ये बात आप याद रखिएगा कि पांचाल आज के वेस्टर्न यूपी का जो बुंदेलखंड रोहिलखंड का इलाका है वहाँ पर फैला हुआ था। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, सदर्न और नदन पांचाल। इसकी कैपिटल्स थे अहिच्छत्र और कांपिल्य। तो बस यही सारी बातें याद करने लायक हैं। इसी के साथ हम अपना 12th महाजनपद देखते हैं। इसको देखने के लिए आप चलिए बच्चों पेज नंबर 132 पर। इसमें लिखा है 12th पॉइंट में शूरसेन। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। महाभारत तथा पुराणों में यहाँ के राजवंशों को यदु अथवा यादव कहा गया है। इसी राजवंश की यादव शाखा में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। तो बच्चों, शूरसेन को याद करने के लिए आप याद करिएगा कृष्ण लीला, या फिर अगर आप कृष्ण भगवान से रिलेटेड कोई भी पिक्चर आपने देखी हो या सीरियल देखा हो उसको आप याद करिएगा शूरसेन से। ये एक ऐसा महाजनपद था जिसकी राजधानी मथुरा थी, और अगर आपने टीवी में, फोन में कृष्ण जी की कोई मूवी, सीरियल कुछ भी देखा हो, कार्टून टाइप में भी, तो भी वहाँ पर मथुरा यानी कि उनके स्थान को मथुरा के नाम से जाना जाता है। तो शूरसेन नाम का जो महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ थी बच्चों? मथुरा, बिल्कुल। और महाभारत और पुराणों में जो यहाँ पर यानी कि शूरसेन महाजनपद में लोग राज करते थे, इनको यदु और यादव कहा गया है, और हमारे कृष्ण जी को भी यादव माना गया है। इसका मतलब कि महाभारत और पुराणों के अनुसार हमारे कृष्ण जी जिनको हम पूजा करते हैं वो यादव परिवार से थे जो कि दूध निकालने का काम करते हैं। इसीलिए बच्चों आपने ध्यान भी दिया होगा कि उनको हम मटकी चोर भी कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी फेस्टिवल होता है तो हम लोग अपने एरिया में वो सर्कल बना करके ऊपर मटकी लटकाते हैं जिसको बाद में कोई एक बच्चा ब्रेक करता है और उसको हम जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन कहते हैं। तो वो बच्चों आप इससे याद रख सकते हैं कि दूध दही उस मटकी में रखी जाती है और वही हम ब्रेक करते हैं। दूध दही कहाँ से आती है? तो बच्चों वो गाय से आती है, और जो गाय का पशुपालन उस जमाने में करते थे उनको अक्सर यादव या यदु कहा जाता था। तो शूरसेन की राजधानी मथुरा थी, यहाँ पर यादवों का राज था और श्री कृष्ण यहीं उत्पन्न हुए थे। तो ये हुआ हमारा 12th महाजनपद कवर। अप चलिए देखते हैं 13th महाजनपद। पेज नंबर 132 पर अपना ध्यान बनाए रखिए और चलिए मैं रीडिंग करती हूँ अपना नेक्स्ट महाजनपद जिसका नाम है अश्मक। तो इसमें लिखा है, यह राज्य दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोतली अथवा पोदन थी। बाद में अवंती ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। इसका मतलब अश्मक नाम का महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर यानी कि ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर पर लोकेटेड था। और इसकी कैपिटल कहाँ थी बच्चों? इसकी कैपिटल थी पोतली, जिसको पोदन के नाम से भी जानते हैं। और बाद में अवंती नाम का एक महाजनपद है बच्चों, जिसने अश्मक नाम के महाजनपद को अपने अंदर समेट लिया, या यू कह लीजिए कि मिला लिया। और ऐसा कब होता है? जब एक मजबूत महाजनपद अपने से कमजोर महाजनपद को अपने अंदर मिला लेता है। तो इसको अवंती ने अपने अंदर समा लिया। तो ये हुआ हमारा 13th महाजनपद अश्मक नाम से। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट महाजनपद जिसको हम अवंती के नाम से जानते हैं। बच्चों इसमें लिखा है, इस राज्य के अंतर्गत वर्तमान उज्जैन का भूप्रदेश तथा नर्मदा घाटी का कुछ भूभाग आता था। यह राज्य भी दो भागों में बटा था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। बुद्धकालीन चार शक्तिशाली राजतंत्रों में से यह एक भी था। बाद में यह मगध राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तो बच्चों इस पैराग्राफ से हमें ये पता चलता है कि अवंती नाम का ये महाजनपद आज का जो मध्य प्रदेश नाम का राज्य है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है बच्चों, उज्जैन। उज्जैन में ही लोकेटेड था। और अगर आप में से किसी को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो बच्चों आपको ये बात जरूर पता होगी कि एमपी में नर्मदा नाम की नदी बहती है और उज्जैन में भी नर्मदा घाटी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर अवंती लोकेटेड था। और अवंती को भी दो भाग में डिवाइड किया गया था। एक भाग था नदन जिसकी कैपिटल थी उज्जैन और दूसरा पार्ट था बच्चों सदन अवंती का जिसकी राजधानी थी महिष्मती। और ऐसा माना जाता था कि बुद्ध काल में जो सबसे मेन चार पावरफुल राजतंत्र थे उसमें से अवंती एक था। तो इस बात से ये स्पष्ट होता है कि अवंती में राजतंत्र था जहां पर राजा का शासन होता था। लेकिन हमने जैसा कि पढ़ा कि मगध एक ऐसा राज्य था बच्चों उस टाइम पर जिसने बहुत सारे राजधानियों को बहुत सारे महाजनपदों को अपने अंदर सम्मिलित कर लिया और अवंती नाम का ये महाजनपद भी उनमें से एक था जिनमें मगध ने अपने आप को शामिल कर लिया। तो ये हुआ हमारा डिस्कशन अवंती पर। चलिए अब हम देखते हैं अपना 15th महाजनपद जिसके लिए जरूरी है कि आप अपना ध्यान बरकरार रखें। तो बच्चों आप लोग पेज नंबर 132 का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं जिसकी महाजनपद का नाम है गंधार और इसमें लिखा हुआ है यह राज्य वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी के जिले पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। इस राज्य में कश्मीर घाटी का तथा प्राचीन तक्षशिला का भूप्रदेश भी आता था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला का विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तो बच्चों जैसा कि आपको इस पैराग्राफ से समझ में आ गया होगा कि सबसे मेन जो शिक्षा का केंद्र यानी कि एजुकेशन सेंटर हम लोग मानते थे अपने एंशियन टाइम में वो दो था। एक था ये गांधार और दूसरा था बच्चों बिहार का नालंदा जो आज भी है नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से। लेकिन नालंदा को खिलजी नाम के शासक ने जला दिया। लेकिन जो ये गांधार था ये बहुत पुराना था और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर था। तो चलिए देखते हैं कि गांधार कहाँ पर स्थित था। तो जैसा कि इस पैराग्राफ से साफ साफ पता चल रहा है कि आज का जो पाकिस्तान का एरिया है जिसे हम पेशावर और रावलपिंडी के जिलों के नाम से जानते हैं इसके साथ साथ हमारा ईस्टर्न अफगानिस्तान इन सारे क्षेत्रों में बच्चों गांधार नाम का महाजनपद स्थित था। और इसकी फेमस चीज यही थी कि वहां पर एजुकेशन का सबसे बड़ा सेंटर जो कि तक्षशिला माना जाता था ये थी। और तक्षशिला को ही गांधार की राजधानी भी बताया गया है। और आज जो हमारा कश्मीर है बच्चों उसका भी कुछ पार्ट गांधार नाम के इस महाजनपद में इंक्लूडेड था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान का कुछ पोर्शन, ईस्टर्न अफगानिस्तान का कुछ पोर्शन और फिर हमारे देश का जो जम्मू कश्मीर है बच्चों जम्मू कश्मीर का कुछ पोर्शन। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप मैप निकालिए और फटाफट इन सारे पोर्शंस को कवर अप करिए फिर आपको समझ में आ जाएगा कि गांधार कहाँ पर था और इसकी राजधानी क्या थी तक्षशिला। तो ये हमारा डिस्कशन कम्प्लीट हुआ गांधार नाम के महाजनपद पर। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट और 16th महाजनपद पर जिसका नाम है बच्चों कंबोज। इसमें लिखा है इसका उल्लेख सदैव गांधार के साथ हुआ है अतः यह महाजनपद गांधार राज्य से सटे हुए भारत के पश्चिमोत्तर भाग अंडर ब्रैकेट कश्मीर का उत्तरी भाग पामीर तथा बदखशा के प्रदेश में स्थित रहा होगा। राजपुर और द्वारका इस राज्य के दो प्रमुख नगर थे। यह पहले एक राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र बन गया। तो बच्चों अगर हमें कहीं भी कंबोज के ऊपर कुछ लिखा हुआ मिलता है या फिर सुनने को मिलेगा तो कंबोज के साथ साथ
तक्षशिला नाम का जो विश्वविद्यालय है उसका, और फिर तक्षशिला जो कि गांधार की राजधानी थी, इन सब का जिक्र एक साथ मिलेगा। तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं बच्चों कि जहां तक गांधार फैला हुआ था हमारे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, यानी कि जम्मू कश्मीर का कुछ पोर्शन था और पाकिस्तान का कुछ पोर्शन था और अफगानिस्तान का ईस्टर्न पोर्शन था, इसी से एकदम लगा हुआ, जिसको हम पड़ोसी भी कह सकते हैं, कम्बोज भी था। और इससे ये पता चलता है कि आज का जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है वहां पर एंशियंट टाइम में कम्बोज लोकेटेड था। तो इसके लिए आप एक बार फिर से मैप ओपन करिए, उसमें देखिए कश्मीर का जो एक्सट्रीम नदन पोर्शन है वो पामीर और बदखशा का जो प्रदेश है वो इस कम्बोज के महाजनपद के अंदर आता होगा। और इसके साथ साथ बच्चों राजपुर करके एक जगह है वो, और द्वारका, ये दोनों इस राज्य का बहुत मेन सेंटर था, जिसको हम कहते हैं मेन अर्बन एरिया, वो ये दोनों थे। कौन से? राजपुर और द्वारका। इसमें ऐसा माना जाता है कि कम्बोज सबसे पहले एक राजतंत्र था यानी कि मोनार्की, और उसके बाद गणतंत्र बना, यानी कि जैसा कि रिपब्लिक हम जिसको बोल सकते हैं। ये हमारी खत्म हुई कम्बोज की स्टोरी, और इसी के साथ हमने डिस्कस किया अभी तक अपने सारे 16 महाजनपद को। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है पेज नंबर 132 पर, और बच्चों इसका नाम है महाजनपदों की शासन व्यवस्था। बच्चों जैसा कि हम इस चैप्टर में देख सकते हैं कि हमें इस चैप्टर में सारे 16 महाजनपदों को पढ़ना है। इसके बाद हमें मौर्य साम्राज्य को एक अलग टॉपिक की तरफ से देखना है और उसको काफी डिटेल में डिस्कस करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आप अपनी पेंसिल्स को मेरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग मूव करिएगा। बच्चों यहाँ लिखा है महाजनपदों में राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का प्रचलन था। दोनों में मुख्य अंतर यह था कि यह राजतंत्रात्मक शासन में शासन की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती थी और वंशानुगत शासन होता था। वहीं गणराज्यों में प्रशासन गण या समूह द्वारा संचालित होता था, जिसके प्रतिनिधि जनता से निर्वाचित होते थे। बच्चों वैसे तो मैंने आपको पहले भी राजतंत्र और गणतंत्र इन दोनों सिस्टम्स में अच्छे से डिफरेंस समझाया है, और इस पैराग्राफ में भी हमें वही समझाया गया है। इसमें हमें ये बताया गया है कि इन दोनों सिस्टम्स में मेनली दो डिफरेंसेस होते हैं, और वो डिफरेंसेस ये हैं कि राजतंत्र में, जिसको हम इंग्लिश में मोनार्की कहते हैं, पूरी पावर एक इंसान के हाथ में होती है जिसे हम राजा कहते हैं, और तो और वो जो शासन करते हैं वो वंशानुगत होते हैं, यानी कि हायरार्किकल पावर उनके पास होती है। और इसके दूसरी तरफ अगर हम गणतंत्र की बात करें तो बच्चों इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में, गण राज्यों में जो प्रशासन होता है वो एक समूह के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि एक राजा के हाथ में पूरी पावर नहीं दी जाती है, बल्कि लोगों का एक समूह होता है, हम जिसे गण कहते हैं, और उनसे सारी पावर को एक्सरसाइज किया जाता है। और तो और इसमें जो हमारे रूलर होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, यानी कि इलेक्टेड होते हैं, ना कि हायरार्की के बेसिस पर वो खुद से सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ महाजनपदों की शासन व्यवस्था का। चलिए अब हम ब्लू कलर से लिखा हुआ अगला पॉइंट देखते हैं कि राजा का क्या रोल होता था। तो बच्चों इसमें लिखा है राजा को संभवतः गणपति कहा जाता था, कुछ महाजनपदों में उसे राजा भी कहा जाता था। वह निर्वाचित किया जाता था, राजा अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कार्य करता था। तो बच्चों इसमें हमें किंग के पावर्स और उसकी एक्सरसाइज को बताया गया है कि वो क्या उसका रोल था, वो कैसे काम करता था। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि राजा को ऐसा प्रोबेबिलिटी कहती है कि वहां पर उस टाइम में गणपति के नाम से जाना जाता था। ये शब्द बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, गणपति। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि राजा को गणपति कहा जाता था। और उसके बाद कुछ महाजनपदों में हम राजा को राजा भी कहते थे और राजा को निर्वाचित किया जाता था और वो राजा बनने के बाद लोगों की भलाई के लिए कार्य करता था। तो ऐसा था हमारे एंशियंट टाइम में किंग का रोल। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद का क्या रोल था और वो अपने रोल को कैसे पूरा करते थे। तो इसमें लिखा है बच्चों, यह परिषद गणपति को शासन चलाने में सलाह देती थी। शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मंत्री परिषद मानी जाती थी। तो जैसा कि आपको मंत्री परिषद के शब्द से ही फील हो रहा होगा कि ये एक काउंसिल है। काउंसिल का मतलब एक ग्रुप है लोगों का जिसमें सारे मंत्री पोस्ट पर रहते थे। और यही मंत्री परिषद बच्चों हमारे जो गणपति हुआ करते थे, जिनको हम राजा के नाम से भी जानते हैं, उनकी हेल्प करते थे सारे कामकाज को ठीक से करने में। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया है अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का एंशियंट इंडिया में, वो इनको ही माना गया है। किनको? मंत्री परिषद, या इंग्लिश में कहें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो ये हुआ हमारे मंत्री परिषद का टॉपिक कंप्लीट। अब हम देखेंगे परिषद नाम का नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों हम पेज नंबर 132 पर पढ़ रहे हैं, तो आप अपना ध्यान लगाए रखिएगा। इसमें लिखा है परिषद नाम का पॉइंट, इसके आगे लिखा है यह वर्तमान लोकसभा के समान होती थी। गणपति और मंत्री परिषद शासन के बारे में परिषद को जानकारी देते थे। परिषद के सदस्यों का चुनाव जनता करती थी और यहीं पर गणपति और मंत्री परिषद के सदस्य बैठते थे। यानी कि बच्चों जब कुछ लोगों का ग्रुप मिलकर के मंत्रियों का गठन करता था तो हम उसको मंत्री परिषद कहते थे। और जहां पर ये ग्रुप अपना काम काज समाप्त करता था उसको हम परिषद कहते थे। यानी कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में इंडियन पॉलिटिक्स देखें तो यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट में दो सभाएं होती हैं बच्चों, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। तो आज का जो लोकसभा है बच्चों वैसा ही कुछ होता था परिषद, जहाँ पर मेन मेन मिनिस्टर्स या यू कह ले कि मंत्री अपने काम काज को करते थे और ये गणपति की मदद करते थे। और यहीं पर गणपति और मंत्री परिषद के जो सदस्य थे दोनों बैठते थे। तो कंक्लूजन ये होता है कि आज की लोकसभा का गठन हमारे एंशियंट टाइम में जाने माने परिषद सिस्टम पर काफी बेस्ड है। तो ये हुआ हमारा परिषद वाला पॉइंट कंप्लीट। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो कि है सेना व पुलिस। इसमें लिखा है गणराज्य की रक्षा के लिए सेना और सेनापति होता था। युद्ध के समय जनता सेना का साथ देती थी। बड़े बड़े नगरों एवं राजधानी की देखभाल के लिए पुलिस व्यवस्था भी थी। बच्चों क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर आर्मी और पुलिस कैसे काम करती है, तो ये टॉपिक समझने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी जैसा कि इस पैराग्राफ में लिखा गया है कि गणराज्य की रक्षा करने के लिए आर्मी और पुलिस को अपॉइंट किया जाता था। और जब वॉर होता था बच्चों तो वॉर जो है उस टाइम पर हमारे जो कॉमन लोग होते थे उन लोगों की प्रोटेक्शन करने के लिए आर्मी और जिसको हम पुलिस भी कह सकते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करती थी। और तो और जो बहुत बड़े बड़े नगर होते थे या राजधानियां होती थी उनके अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए और वहां पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस और सेना हमेशा से ही अपॉइंट की जाती थी। तो आज का जो पुलिस सिस्टम है और आर्मी का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हमारे एंशिएंट इंडिया में भी प्रेवलेंट था। तो बच्चों अभी तक हमने जितने पॉइंट्स पढ़े हैं आप उसमें देख सकते हैं कि आज भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, लोकसभा होती है या यूं कह ले आर्मी और पुलिस, ये सारे जो सिस्टम्स हैं वो हमारे एंशिएंट इंडिया में पाए जाते थे। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें एंशिएंट इंडिया पढ़ना क्यों जरूरी है। और इसी के साथ आज हमारे पास समय नहीं होने की वजह से हम यहीं रुकते हैं और अगली क्लास में हम मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले पॉइंट्स को कवर करते हुए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपने इस चैप्टर को रीड करिए। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।